पृष्ठ संख्या 7, भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के थोड़े से नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने चिंतन और संघर्ष के द्वारा हमारे देश को हर क्षेत्र में प्रभावित किया। वे अपने जीवन काल में और उसके बाद भी बौद्धिक बहस व राजनैतिक वाद विवाद के विषय बने रहे। उनकी जीवनी लिखने के बहाने कतिपय लेखकों ने संगठित प्रयास से यह बात सिद्ध करना चाहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय जीवन को सही दिशा नहीं दी। किन्हीं भ्रांत धारणाओं के वशीभूत इस समाज के एक वर्ग के लोग एक फर्जी भगवान की पूजा करते हैं। कतिपय लेखकों ने उनके कर्म और विचार से उन्हें देवदूत की कोटि में रखने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में हमने प्रयास किया कि उनका जो भी पक्ष समाज को प्रेरणा देने वाला है, उसे पाठकों के समक्ष उजागर किया जाए। वे न तो भगवान या भगवान की ओर से भेजे गए कोई संदेश वाहक थे और न तो इतने निरीह निर्जीव जन जिनके योगदान की उपेक्षा की जाए। यह तो उनको भारतीय समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति स्वीकार करने के बाद ही अपने को श्रेष्ठ बुद्धिजीवी तथा लेखक घोषित करने वालों ने विशेष प्रयास करके उनके उचित पक्ष पर भी कालिख पोतने की कोशिश की। आखिर ऐसे लोगों के लिए यह विचारणीय प्रश्न अवश्य होना चाहिए कि कुछ वर्ग विशेष के लोगों द्वारा उन्हें बार बार नीचा दिखाने की भावना से इतना कठिन श्रम क्यों करना पड़ता है। उनके सारे प्रयासों के बावजूद हिंदू समाज अथवा भारतीय समाज के पांचवें हिस्से में वे देवता का स्थान क्यों ग्रहण कर लिए हैं? एक तो यह कहना कि उनका सार्वजनिक जीवन 1924 से प्रारंभ होता है, यह सरासर गलत है। वे तो 5 वर्ष की उम्र से ही सामाजिक तिरस्कार झेलते हुए व्यवस्था से विद्रोही बनने लगे थे। प्रखर प्रतिभा होने के बावजूद एक अबोध बालक को, जिसे सामाजिक छुआछूत अथवा अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अल्प ज्ञान भी न हो, उसे वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणाम स्वरूप कक्षा में पठन पाठन हेतु प्रवेश न मिले, उसे सारी कसौटियों पर खरा उतरने के बावजूद पढ़ाई कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ने के लिए विवश किया जाए, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न हल करने का प्रयास करते समय कक्षा के सभी बाल सहपाठी अपना भोजन पैकेट एक अछूत बालक के हाथ से छू न लिया जाए, इसीलिए अपना सामान लेकर भाग खड़े हों। अछूत परिवार में पैदा होने के दंड स्वरूप कोई बाल सखा बनने को तैयार न हो तो क्या ऐसा बालक विद्रोही नहीं होगा? उसे स्कूल का चपरासी भी दूर से ही जल पिलावे, जलपात्र स्पर्श न करने दे तो बालक मन विद्रोही न होगा? उनका पूरा पठन पाठन ही व्यवस्था से विद्रोह था। ऐसे समय में जब अंत्यज परिवार में पैदा होने मात्र से कोई शिक्षा का अधिकारी नहीं है, फिर भी वह अपने हठ से न केवल शिक्षा पूरी करता है अपितु अपने सहपाठियों को पीछे छोड़ देता है। वह किसी संभ्रांत व्यक्ति की मदद से उच्च शिक्षा हेतु विलायत प्रस्थान करता है और अमेरिका में ही छात्र जीवन के ही दौरान जाति व्यवस्था के विरुद्ध शैक्षिक कार्यों में लगे लोगों को इसके बदलने की मांग करते हुए उन्हें विद्रोह करने का आग्रह करता है। मेरी नज़र में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बाल्यकाल से ही विद्यार्थी रूप में व उच्च शिक्षा अध्ययन करते समय ही समाज को प्रभावित करने लगे थे। पृष्ठ संख्या 8, 1918 से 1919 के सुधार के समय ही उन्होंने दलितों के लिए विशेष अवसर की मांग शुरू कर दी थी। इसीलिए उनका सार्वजनिक जीवन कब से शुरू हुआ इसकी कोई एक निश्चित तिथि नहीं है। उन्होंने प्रारंभिक अवस्था से ही समाज के उपेक्षित वर्ग को प्रभावित किया। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन से असहयोग का प्रश्न है, इस मुद्दे पर सम्यक दृष्टि से समीक्षा करने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में छुआछूत मिटाओ, सामाजिक विषमता समाप्त करो, यह कोई मुद्दा नहीं था। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हम जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का पितामह कहते हैं, वे लोग घोर वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक थे। अंग्रेजों ने चेम्सफोर्ड के सुधार के जरिए जो संवैधानिक सुधार किए, उनमें अल्पसंख्यक ब्रैकेट में धार्मिक ब्रैकेट क्लोज आधार पर आरक्षण की बात कही गई, लेकिन दलित आरक्षण का पूरा विरोध हुआ। उस सुधार के लिए कांग्रेस का पक्ष रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने कहा कि वयस्क मताधिकार होने पर दलितों का प्रश्न स्वमेव हल हो जाएगा, उनके लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, अपितु नामांकन मात्र से उनका वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख आदि सभी धार्मिक वर्गों के लोग दलित प्रश्नों से अपनी आंख मूंदे लेते थे। इतना ही नहीं, दलितों के विरोध में एक हो जाते थे। इसीलिए जब इन वर्गों के नेता अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करते थे, तो स्वाभाविक था कि उनके किसी प्रयास के बिना समाज की उपेक्षित वर्ग की साझेदारी कैसे संभव होती। यह इतिहास की सच्चाई है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह से हुई, जब सेना की बंदूकों के कारतूस को दांत से खोलने के लिए विवश किया गया। कतिपय सैनिकों ने, चूंकि कारतूस में गाय की चर्बी मिली है, इसीलिए धार्मिक कारणों से उन्हें खोलना संभव नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की चिंगारी में कई तत्वों के अलावा प्रमुख तत्व धार्मिक भी था। इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडा पर दलित उद्धार अथवा सामाजिक परिवर्तन नहीं था। उसकी शुरुआत तो गांधी के नेतृत्व के दौर में हुई। यह भी अलग से शोध का विषय है कि अछूतों के लिए अंग्रेज सरकार पर डॉक्टर अंबेडकर की ओर से इतना बड़ा दबाव न पैदा होता, तो प्रारंभ से ही वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास रखने वाले गांधी जी क्या अछूतोद्धार आंदोलन को भी आज़ादी के संग्राम के समानांतर चलाते? क्या गांधी जी के हरिजन उद्धार छुआछूत आंदोलन में सभी कांग्रेस जन की उन्हीं के बराबर भागीदारी अथवा सक्रियता थी? डॉक्टर अंबेडकर ऐसा मानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम के दबाव के कारण ही इस देश के अछूतों पर अंग्रेज सरकार कुछ कृपा प्रदान कर सकती है। उस समय के कुछ देशी रियासतों ने भी इस कार्य में डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया, तथा कुछ रियासतों ने कानून बनाकर अछूतों को अपनी रियासती सेवाओं में काम का अवसर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों के कृपाकांक्षी दल वर्ग के लोगों के लिए प्रथम वरीयता समाज परिवर्तन के काम को था, जिसमें हजारों वर्ष से शास्त्र सम्मत जन्मना जाति व्यवस्था के तिरस्कार से वे मुक्त हो सकें। राष्ट्रीय आंदोलन के निशाने पर अंग्रेजों की सैकड़ों वर्ष की गुलाम जिंदगी से मुक्ति थी, तो डॉक्टर अंबेडकर के निशाने पर 5,000 वर्ष पुरानी वर्ण व्यवस्था के गर्भ से उपजी तिरस्कार से मुक्ति थी। आखिर जो बुद्धिजीवी 1942 के संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर की पृथकता से खिन्न होकर एक वर्ग को इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं कि वे लोग एक फर्जी भगवान की पूजा न करें, वही बुद्धिजीवी क्यों नहीं 1942 के निर्णायक संग्राम से असहयोग करने के लिए दामोदर वीर सावरकर, माधवराव, सदाशिव गोलवलकर ब्रैकेट में गुरुजी ब्रैकेट क्लोज, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि की चर्चा क्यों नहीं करते थे? पृष्ठ संख्या 9। आजाद भारत ने ऐसी तमाम विभूतियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जिनका गांधी जी के नेतृत्व वाले आंदोलन से कुछ नहीं लेना देना था। प्रारंभिक दौर में जिन्हें महान विद्रोही की संज्ञा दी गई, ऐसे MN राय के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें 13,000 रुपये माहवार अंग्रेज सरकार से मिलने लगा कि वे भारत के मजदूर आंदोलन को कांग्रेस के चंगुल से अलग कर दें। आखिरकार अंग्रेज वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो CP रामास्वामी अय्यर, JP श्रीवास्तव और महान तिलकवादी माधव राव श्री हरि पांडे भी थे, जिन्हें आजाद भारत की सरकार ने तमाम सम्मानजनक पदों पर स्थापित किया। यह केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विडंबना है कि अंग्रेजी हुकूमत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटेन बेटन आजाद भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल हुआ और उन्हें स्थापित करने में स्वतंत्रता संग्राम की दोनों महान विभूतियां नेहरू और पटेल साझीदार थे। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कर्म और व्यक्तित्व ने किसी समाज को गहराई से प्रभावित किया हो, उसका मूल्यांकन पूर्वाग्रह के साथ नहीं होना चाहिए। अंबेडकर साहब के विद्रोह से आहत भारतीय समाज के कुछ वर्गों में जिन्होंने शास्त्र सम्मत व्यवस्था बनाकर हमारे सामाजिक स्वरूप को कुरूप कर दिया था, उनके मन में आने वाले अनंत काल तक एक टीस गुस्सा बना रहेगा और वही गुस्सा भड़ास बनकर वर्शिपिंग ए फॉल्स गॉड के रूप में निकलता रहेगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति बेजोड़ थी। भारत की एकता में उनका पूरा विश्वास था। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करते समय उन्होंने राष्ट्रीय एकता को ही महत्वपूर्ण माना और उसी के अनुरूप तंत्र के गठन पर जोर दिया। कांग्रेस से सभी विवादों को ताक पर रखकर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। हिंदू कोड बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रधानमंत्री के ढुलमुल रवैये के कारण उन्होंने बिना विलंब किए मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। वे सामाजिक परिवर्तन के प्रबल पक्षधर थे, इसीलिए उनके एजेंडा पर यह विषय ही नंबर एक का था। उन्होंने 10 अक्टूबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देते समय जो बात कही, वह इस विषय पर रोशनी डालने के लिए पर्याप्त है। आज से 4 वर्ष 1 माह 26 दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाकर मंत्री पद देने की पेशकश की। मेरे लिए कानून मंत्री बनाने का निमंत्रण आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैं तो विपक्ष में था। मुझे खुद ही संदेह था कि अब तक मैं जिनके विरोध में था, उनके साथ कैसे काम कर सकूंगा। मुझे अपनी योग्यता के बारे में भी संदेह था कि क्या मैं अपने पूर्ववर्ती सुयोग्य कानून मंत्रियों जैसा हूँ। फिर भी मैंने अपने संदेह को ताक पर रख कर प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को इसीलिए स्वीकार कर लिया कि देश के नवनिर्माण हेतु मुझ में जितनी भी क्षमता है, उसके अनुरूप असहयोग करना चाहिए। यद्यपि उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन की खिल्ली उड़ाई थी, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी अंग्रेज के प्रति नरम रुख अपनाया था। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने खुशी दिवस मनाया था। उस अवसर भी कांग्रेस से दलितों के प्रति उस संस्था की सेवा के लिए जवाब तलब किया था। उन्होंने 1942 के आंदोलन को भी गैर ईमानदारी के आंदोलन की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के बारे में उनकी धारणा थी कि सांप्रदायिक हिंदुओं के बहुमत ने इस संगठन को खड़ा किया है, जो सवर्ण हिंदुओं के आधिपत्य में उनके हितों के लिए संघर्ष करने वाला एक संगठन है। उनकी राय थी कि ब्राह्मण हिंदू दिमाग को गुलाम बनाता है और बनिया उसके शरीर को गुलाम बनाता है। इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस से उनके विवाद के मूल में कांग्रेस का वर्ग चरित्र था। पृष्ठ संख्या 10। कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही से मुक्ति संग्राम के साथ देश के हजारों वर्ष के सामाजिक बुराई के संग्राम को भी यदि समान महत्व दिया होता तो शायद कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की खाई पाटने में आसानी हुई होती। फिर भी देश के नवनिर्माण में कांग्रेस उनके महत्व को जानती थी, इसीलिए कांग्रेस ने अपनी सभी शिकायतों को ताक पर रख कर न केवल उन्हें मंत्रिमंडल में रखा, अपितु बंगाल से वे संसद के सदस्य चुने गए। भारत का विभाजन होने पर उनकी संसद की सदस्यता जब जाने लगी, तब गृह मंत्री सरदार पटेल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खेर से बात की। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 30 जून 1947 को पत्र लिखा और कांग्रेस के श्रेष्ठ नेताओं की पहल पर बंबई से उन्हें पुनः भारतीय संसद का सदस्य बनाया गया। बाद के साक्ष्य इस बात को पुष्ट करते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी से उनका विचार किसी निजी स्वार्थ के कारण नहीं था। उनके विवाद के मूल में दलित वर्ग के उत्थान का प्रश्न जुड़ा रहता था। राज्यसभा में 6 सितंबर 1954 को अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट पर उन्होंने जो भाषण किया वह महत्वपूर्ण है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। आप पुनः नमक के ऊपर टैक्स लगा दें। यह टैक्स बहुत मामूली था। उस समय जब इसे समाप्त किया गया तो इस मद से 10 करोड़ रुपए आते थे। अब यह 20 करोड़ पर पहुंच सकता है। चूँकि गांधी जी के नेतृत्व में इस टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, इसीलिए उनकी याद में इसे समाप्त किया गया। मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, इसीलिए मेरा सुझाव है कि इस टैक्स को फिर से लगावें और उनकी याद में उसी पैसे से गांधी ट्रस्ट फंड बनाकर दलितों के उद्धार और पुनर्वास पर इसे खर्च करें। आखिरकार हम सभी लोगों की राय में अछूत ही उनके सबसे प्रिय और नज़दीकी जन थे, इसीलिए ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ऐसे पवित्र कार्य को स्वर्ग से गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त न हो। इस फंड को बजटी प्रावधानों से अलग रखा जा सकता है जो मान्य गांधी जी की स्मृति में होगा और जिन वर्गों की उन्नति और सुरक्षा के लिए वे संकल्पबद्ध थे, उन्हीं वर्गों को राहत देने के लिए यह धन खर्च हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह भाषण इस बात का सबसे बड़ा साक्ष्य है कि वे गांधी जी को किस दृष्टि से देखते थे। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन में जिस तरह कांग्रेस लीग और सिख नेता आपस में मिल गए और अपने वर्गों के पक्ष में कम्युनल अवार्ड को स्वीकार कर लिया, उसे स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव पैदा करने लगे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर अलग थलग कर दिए गए थे। ऐसी परिस्थिति में क्या उनकी प्रतिक्रिया गैर वाजिब कही जा सकती है? किसी व्यक्ति के किसी कदम पर टीका करने के साथ परिस्थितियों का भी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आवश्यक होना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि जब भी अवसर आया, डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में कांग्रेस और लीग साथ खड़े होते थे। कांग्रेस नेतृत्व ने 1946 के बाद जिस तरह अंबेडकर को अपने साथ करने की कोशिश की, यदि यह पहल 1931 से 32 में शुरू हुई होती, तो शायद भारत के विभाजन का दुखांत पटाक्षेप हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का न होता। संपूर्ण दौर में कांग्रेस ने केवल लीग को पटाने में अपनी शक्ति का क्षय किया और उसका कोई लाभ देश को नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान नगण्य था। इतिहास साक्षी है कि समय समय पर कई महापुरुषों ने कांग्रेस के नेतृत्व में छिड़ने वाले आंदोलनों से अपना नाता नहीं रखा। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छोड़ने का प्रस्ताव किया था। इसके पूर्व 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रिपोर्ट छपी और रोलेट एक्ट पास हुआ था। इस कानून का जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसके कारण जलियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड हुआ था। पृष्ठ संख्या 11। देश के इस भयानक परिदृश्य से मुक्ति हेतु शीघ्र संग्राम की जरूरत थी। फिर भी पंडित मदन मोहन मालवीय, देश बंधु चितरंजन दास और श्रीमती एनी बेसेंट ने गांधी जी ने प्रस्ताव का विरोध किया था। किसी भी राष्ट्र नायक के जीवन के अनेक पहलू होते हैं। किसी का किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान होता है और कृतज्ञ राष्ट्र उसके उस महत्वपूर्ण पक्ष को ही ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करता है। डॉक्टर अंबेडकर विरोधियों ने संविधान निर्माण में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान को नकारने की असफल कोशिश की है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। राजनैतिक कारणों से अंबेडकर उस समय सभा में नहीं थे। संविधान का कारण और उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और उसके समर्थन में महत्वपूर्ण भाषण दिया। मूल अधिकारों के अध्याय को सरदार पटेल ने प्रस्तुत किया और उसके पक्ष में शानदार तर्क दिए। लेकिन क्या यह दोनों चीजें केवल इन दो व्यक्तियों की थी? इसके पीछे संघर्ष का लंबा इतिहास था। 1916 में ही कांग्रेस लीग ने मिलकर बंबई में भारतीय संविधान के लिए कुछ सुझाव दिए थे। 1927 में लखनऊ में कांग्रेस की पहल पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मूल अधिकारों के संबंध में कुछ प्रस्ताव पास हुए थे। वास्तव में संविधान का प्राक दर्शन, इसके नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों का अध्याय हमारे देश के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के दौर में विकसित हुआ और उसे आगे बढ़ाने में नाम और अनाम, सैकड़ों लोगों के बलिदान, लाखों के त्याग और न्यौछावर की भावना ने इन अध्यायों को आगे बढ़ाया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल तो उनके प्रवक्ता मात्र थे, वैसे बलिदानियों में उनकी भी श्रेष्ठतम व्यक्तियों में गिनती होगी। उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन ही अनंत काल से वंचित लोगों को मानवाधिकार दिलाने के संघर्ष की अंतहीन कहानी है। उदाहरण के लिए, समाजवादी आंदोलन के लोग अपने राजनैतिक विरोध के कारण संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, किंतु इसी आधार पर यह कह दिया जाएगा कि संविधान में वर्णित प्राक दर्शन, नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और संविधान के अन्य तत्वों के विकास में उनका कोई योगदान नहीं। ऐसा केवल पूर्वाग्रह के ग्रस्त लोग ही कह सकते हैं। संविधान सभा में आने से पूर्व सभा के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार जो ज्ञापन है, उसमें उनके संवैधानिक दृष्टिकोण का सार है। उसे देखकर उनके बारे में बनाई धारणा का खंडन होता है। इसीलिए संविधान सभा के समापन अवसर पर अधिकांश सदस्यों ने उनके संविधान निर्माण के योगदान की सराहना की। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने राज्यसभा में जो भाषण दिया उसका उल्लेख जरूरी है। पंडित नेहरू ने कहा, वे तो बहुत वर्षों तक एक भारतीय सार्वजनिक जीवन के विवादास्पद व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे, लेकिन निःसंदेह उनमें अद्वितीय क्वालिटी थी, उनमें अतुलनीय विद्वत्ता थी। वे अपने विचारधारा को जरूरत से अधिक स्वीकार कराने के लिए जबरदस्त दबाव पैदा करते थे, जिसमें कभी कभी उस पर प्रतिक्रिया भी होती थी। उनके किसी भी अन्य गतिविधि के मुकाबले संविधान तैयार करने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह ज्यादा समय तक याद की जाएगी। उन्होंने लोकसभा में कहा, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वह हमारे संविधान निर्माताओं में से एक थे। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस संविधान को बनाने में उन्होंने जितना कष्ट उठाया और ध्यान दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया। वे हिंदू समाज के सभी दमनात्मक संकेतों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे। वे जबरदस्त विवादास्पद हो जाते थे क्योंकि वे मधुर भाषी नहीं थे। मुझे इस बात में संदेह नहीं कि हम बहुत मामलों में सहमत हो या न हो, बहुत मामलों में उनके जबरदस्त दबाव बनाने से तथा मजबूत विरोध खड़ा करने से जो बातें छूट सकती थी या उन पर से ध्यान हटाया जा सकता था। पृष्ठ संख्या 12। हम मजबूरन उन चीजों के प्रति जागरूक और सावधान हो जाते थे तथा सदियों से सताए वर्ग की उन्नति के लिए तैयार हो जाते थे। वे मंत्री रूप में मेरे साथ थे, उनका रुख विरोधी था, लेकिन उनका आचरण रचनात्मक और सहयोगपूर्ण था। संसद के वरिष्ठ सदस्य नरहरि विष्णु गाडगिल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वे प्रगतिशील ढंग से सोचते थे। वे अब कहने लगे थे कि अनुसूचित जातियों को अब और अधिक सुविधा की जरूरत नहीं है। अब वे स्वयं आगे आएं तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें। इस संघर्ष में पूरे देश के अन्य समुदायों को भी साथ रखें। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर समय के रफ्तार के साथ अपने विचारों में परिवर्तन के लिए भी तैयार थे। उनकी राय विकसित हो रही थी कि दलित वर्ग के लोग अनंत काल तक आरक्षण की बैसाखी पर जिंदा नहीं रह सकते। वे समाज की दौड़ में इन वर्गों की स्वस्थ भागीदारी के पक्षधर थे, इसीलिए उनके खिलाफ लगने वाले अधिकांश आरोप मिथ्या प्रचार और निराधार तथ्यों को प्रस्तुत करने के कारण आज आवश्यकता है उनके सकारात्मक पक्ष को आगे कर समाज के उपेक्षित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की, जिसे पूर्वाग्रहग्रस्त लेखक और विद्वान नहीं कर सकते। उनके नाम का राजनैतिक उपयोग करने वाले भी उनको पीछे ढकेलने में कम सहयोगी नहीं हैं। आज जरूरत है उनके बारे में संतुलित ढंग से विचार करने की। डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो हिंदू वर्ण व्यवस्था से त्रस्त होकर ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों में से कोई धर्म स्वीकार कर लेते, किंतु उन्होंने भारतीय मिट्टी से जन्मे वर्ण आधारित व्यवस्था के विरोधी बौद्ध धर्म को ही स्वीकार किया। वे उस धर्म की करुणा, दया, प्रेम, मानवता के संदेश से ही प्रभावित हुए। यह अपने आप में प्रमाण है कि इस देश की मिट्टी से उनको कितना अटूट स्नेह था। भारत विभाजन के वे कभी समर्थक नहीं थे। वे तो हिंदू समाज को चेतावनी के लहजे में कहते थे कि हिंदू समाज में अनुदार पंथ के दबाव में इस समाज का विघटन और बंटवारा एक स्वाभाविक परिणति है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि यदि हिंदू समाज में सुधार नहीं हुआ तो इस समाज में बंटवारे की निरंतरता बनी रहेगी। इसीलिए हिंदू मन, कर्म और विचार से एकतावादी बने। पाकिस्तान का निर्माण इस समाज की ऐतिहासिक कमजोरियों का अवश्यंभावी परिणाम है। उनके इस ऐतिहासिक विश्लेषण में एक गंभीर चेतावनी है, उसे अनसुनी कर उन्हें पाकिस्तान का समर्थक घोषित करना उसके साथ महान अपराध है। मैंने इस पुस्तक में उनके वास्तविक पक्ष को उजागर करने की कोशिश की है। मेरे जैसे राजनीति के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के लिए यह एक कठिन कार्य था। फिर भी उनके विरुद्ध कतिपय संकीर्णतावादी बुद्धिजीवियों द्वारा संगठित आक्रमण ने मुझे यह छोटी पुस्तक लिखने के लिए विवश किया। इस हेतु मुझे सामग्री उपलब्ध कराने में जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी के डॉक्टर हरिदेव शर्मा, संसदीय पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश विधान मंडल पुस्तकालय के साथियों ने पूरी मदद की। उसके लिए उनका आभारी हूँ। लोक भारती प्रकाशन के साथियों ने इसे प्रकाशित कर मेरा उत्साह वर्धन किया। उसके लिए उनका कृतज्ञ हूँ। पाठकों तक मेरी बात किस सीमा तक प्रवेश करती है, यह भविष्य के आकलन के लिए छोड़ता हूँ। डॉक्टर सुहेल अहमद, डॉक्टर जी के राय, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा, भाई केशव यादव का आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु अनेक कष्ट झेले। मोहन सिंह।